जमानों की उमंग बाब नंबर 26 कुफर। नहुम में यसु अक्सर जब सफर से थका मांदा होता तो आराम करने के लिए गाहे बिगाहे कुफर नहुम में आया करता था। लोग कुफर नहुम का उसका शहर कहकर पुकारते थे। ये शहर गलील की झील के किनारे वाक़े था, जो गनीसरत की खूबसूरत मैदानी सरहद के करीब था। गहरी नशीबी झील की खुशगवार आबो हवा मैदान के कोने कोने को मुअत्तर करती थी। यसु मसीह के जमाना में यहां खजूर, जैतून और दरख्तों के बेशुमार झंड थे। बागात और अंगूरों के ताकिस्तान भी थे। यहां हरे भरे लहलहाते खेत और खूबसूरत मुख्तलिफ अनवा व अकसाम के फूल भी देखे जा सकते थे। पहाड़ी से बहते चश्मे उन सबको सैराब करते थे। झील का किनारा और पहाड़ियों का सिलसिला उस शहर से थोड़ी ही दूर था, जिस पर छोटे छोटे गांव और कस्बे आबाद थे। झील माहीगीरों की कश्तियों से भरी पड़ी थी। हर जगह गहमागहमी देखी जा सकती थी। कुफर नहुम मसीह खुदावंद के काम का मरकज था। शाहरा पर वाक़े होने की वजह से ये शहर दमिश्क, यरूशलेम, मिस्र वगैरह के लिए शारे का काम देता था। कई इलाकों से लोग आते और उस शहर में से होकर गुजरते। कभी कभी लोग दूर दराज से सफर की थकान दूर करने के लिए यहां ठहर जाया करते थे। यही वो जगह थी जहां मसीह यस्सु तमाम तबकों और कौमों के लोगों से मिल सकता था। यही वो जगह थी जहां वो उरा और गरीबों को तालीम दे सकता था, जो उसके कलाम को दूर दराज का इलाकों में पहुंचाते। यहां लोगों की तवज्जो नजात दहिंदा और पेशन गोइयों की तरफ लगाई जाती। यूं पल भर में उसके मिशन की तकमील होती। एड्रन की नालिश के बावजूद लोग मसीह के मिशन की तरक्की के ख्वाहां थे। पूरा आसमान उसमें दिलचस्पी लेता था। फरिश्ते उसकी खिदमत के लिए इंसानों को तैयार कर रहे थे। वो इंसानों को कायल करके मसीह के कदमों में ला रहे थे। कुफर नहुम में एक सरदार का बेटा, जिसे मसीह ने शिफा बख्शी थी, उसकी कुदरत की वाजह गवाही था। दरबारी और उसके घर वाले बड़ी खुशी से अपने ईमान की गवाही देते थे। एक दफा का जिक्र है कि जब शहर के लोगों को पता चला कि अजीम तबीब उनके शहर में आया है, तो भीड़ जौक दरजोक उसके चौगर्द आ जमा हुई। ये सबत का दिन था और हैकल में गुंजाइश से ज्यादा लोग आ गए, जिनको वापस भेजना पड़ा। उन्होंने उसे से सुना। वो सब उसकी तालीम से हैरान हुए, क्योंकि वो उन्हें गरीबों की तरह नहीं बल्कि साहिब एहतियार की तरह तालीम देता था। लूका 32:4। मत्ती। फरीसियों और कौम के बुजुर्गों की तालीम रस्मी, बेहिस, गैर दिलचस्प, बेमानी और रटी रटाई होती थी। उनके सामने खुदा के कलाम की कोई वक्त न थी। खुदा के कलाम की जगह उन्होंने अपनी रस्मों और रिवायात को जगह दे रखी थी। जो वो बयान करते थे उनमें हस्बे मामूल उनका दावे होता था कि वो शरत को बयान करते हैं, मगर उससे ना उनके अपने दिल और ना ही सुनने वालों के दिल मुतहर्रिक होते। यसु मसीह को उन मुख्तलिफ नजरियात से कुछ गर्ज वायत न थी जो यहूदियों के दरमियान पाए जाते थे। उसका तो काम सच्चाई बयान करना और नबियों और आबाई बुजुर्गों की तालीम पर रोशनी डालना था। यूं इल्हामी नुस्खे आदमियों के सामने नए मुकाशफा की सूरत में आश्कार होते। उसके सामईन ने उससे पहले कलाम के इतने गहरे न सुने थे। वो सच्चाई को बड़ी सादगी और खूबसूरती से बराह रास्त पेश करता। उसकी जबान साफ, सादा और नदी के पानी की तरह शफाफ और रवां होती। गो उसकी जबान सादा होती थी, फिर भी वो एहतियार वालों की तरह तालीम देता था। शरा के मुअल्लिम यकीनी हालत में हिचकिचाते हुए तालीम देते थे, क्योंकि उनको यकीन नहीं होता था कि जो कुछ हो कह रहे हैं ये इल्हामी नुस्खों के हम आहंग है या नहीं। इसलिए उनके सामईन आए रोज गैर यकीनी का शिकार होते थे। लेकिन मसीह की तालीम में शक की कोई गुंजाइश न होती थी। वो इस तरह तालीम देता जैसे किसी के सामने खास मकसद हयात हो। वो सामईन के सामने अबदी दुनिया के हकायक पेश करता। जो कुछ भी वो कहता उसमें खुदावन को पेश करना। खुदावन मसीह इंसानों को दुनियावी जाहे हशमत के जादू से बाहर निकालना चाहता था। उसने उस दुनिया को अबदी दुनिया की चीजों के ताबे जाहिर किया, ताहम उनने उनकी जिस्मानी जरूरी और जिंदगी को नजरअंदाज ना किया। उसने सिखाया कि आसमान और जमी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए इलाही सदाकत इंसान को रोजमर्रा की जरूरत अंजाम देने के लिए बेहतर तौर पर तैयार करती है। वो इस तरह बात करता जैसे वो उनसे बखूबी वाकिफ हो। रहम के मुख्तलिफ पैगामात जो वो अपने सामईन को देता, वो हर लिहाज से उनके लिए तसल्ली व सुकून का सबब बनते, क्योंकि वो जानता था कि किस तरह थके मांदे की मदद की जा सकती है। यसैया 4:50। आपस के लबों से फजल टपकता था ताकि वो लोगों को सच्चाई के खजाने पहुंचाए। तासब और तंग नजर लोगों को भी वो मिलना जानता था, बर फिर ऐसी मिसालें देकर उनको हैरान कर देता जो उनके दिलों को जीत लेते हैं। उसकी मिसालें रोजमर्रा की जिंदगी से हुआ करती थीं। बेशक वो सादा होती थीं, मगर अपने अंदर गहरे में मुतालिब रखती थीं। हुआ के परिंदे, मैदान की घास, बीज, चरवाहा और भेड़, उनके जरिए मसीह येसु लोगों को अबदी सच्चाई का सबक देता। उसके सामईन बाग में जब कभी भी उन चीजों को देखते, उन्हें मसीह की तालीम याद आ जाती। यूं उसकी तमासील अवाम के लिए दायमी तालीम बन जाती। मसीह यसू ने कभी भी किसी की खुशामद की न किसी के हक में ऐसी बात जिससे उसका सर गरूर से फूल जाए। फिर भी उन लोगों ने जो तासुब से पाक थे उसकी तालीम को कबूल किया। उन्होंने ये भी मालूम किया कि ये उनकी हिकमत का इम्तहान था। सादा जबान में बयान करदा रूहानी सच्चाइयों के बारे भी वो हैरान थे। बड़े बड़े आलिम फाजिल उसके कलाम से मुतासिर हुए बगैर न रहते। उसका सादा पैगाम उन पर लोगों के लिए होता था। मसीह यसू अपने सामईन के मुतगैर चेहरों को बड़ी संजीदगी से देखता। जिन चेहरों से दिलचस्पी और खुशी टपकती, उनको देखकर उसे बड़ा इत्मीनान हासिल होता। जैसे ही सच्चाई का तीर उनकी रूह से पार होता, खुदगर्जी की दीवारें तोड़ता, दिल में शिकस्तगी लाता और वो फर्द वाहिद खुदा का शुक्रगुजार होता, तो उसे देखकर यसू का दिल खुशी से मामूर हो जाता। और जब वो हुजूम का जायजा लेता और उसकी आंखें उन रूहों से दो चार होती जिनको उसने पहले भी था, तो उसका चेहरा खुशी से तमतमा उठता। उन्हें अपनी सल्तनत को रियाया समझता। फिर उसने उन चेहरों का भी जायजा लिया जो बेपर्दा थे और कह रहे थे कि हम नूर को खुशामदीद नहीं कहते। जब वो उन्हें देखता तो उसका दिल जाता। मसीह ने हैकल में बड़ी वजाहत से बताया था कि वो किस कसम की बादशाहत कायम करने आया है, यानी इबलीस के असीरों को उसके चिंगल से आजादी। जब वो कह रहा था तो एक आदमी जिसमें बदरूहें थीं चीखता चलाता उसकी तरफ दौड़ा, ऊंची चीख कर कहने लगा, ए यीशु, खुदा ताला के बेटे से क्या काम तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे अजाब में न डाल। उसके साथ ही हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोगों की तवज्जो मसीह और उसके काम पर से हट गई। यही इबलीस का मकसद था जिसमें वो कामयाब हो गया। ताहम मसीह ने इबलीस को झड़का और कहा, चुप रह, और उसमें से बाहर निकला। इबलीस उसे नुकसान पहुंचाए बगैर जमीन पर टपक कर उसमें से निकल गया। इबलीस ने उस शख्स के जहन को तारीक कर रखा था, मगर मसीह की हुजूरी में उसका जहन रोशन हो गया और इबलीस से आजाद होने के लिए जाग उठा। मगर इबलीस ने अपने अल्फाज उसके दिल में डाल दिए और कहा कि मुझे तुझसे क्या काम। मगर मसीह, जिसने बयाबान में इबलीस पर फतह पाई थी, दोबारा उसके मुकाबले आ गया। इबलीस ने उस शख्स को अपने कब्जा में रखने के लिए एढ़ी चोटी का जोर लगाया, मगर उसे पसपा होना पड़ा। ये मसीह की फतह थी। यूं मालूम होता था कि इबलीस शायद उसकी जान ले ले जिसको उसने काफी अरसा से अपने कब्जा में कर रखा था। मगर नजात दहिंदा ने यहां इख्तियार के साथ कलाम किया और असीर को आजाद करा लिया। चुनाचे वो शख्स जो अरसा से इबलीस की कैद में था, अवाम के सामने खुशोखुर्रम आजाद खड़ा हो गया। इबलीस से छुटकार पाने वाले शख्स ने अपनी रिहाई के लिए खुदावंद की तारीफ की। वो आंखें जो दीवानगी से डरावनी दिखाई देती थीं, उनमें ज़हानत आ गई। उनसे खुशी और शुक्रगुजारी के आंसू छिलक पड़े। लोग इस मोजज़ा से हका बका रह गए। जब वो खौफ और तजब्जुब की हालत से बाहर निकले तो वो एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या है? ये तो नई तालीम है। वो नापाक रूहों को भी इख्तियार के साथ हुक्म देता है और वो उसका हुक्म मानती हैं। मरकुस 27:1। इस बीमारी का सबब ये शख्स खुद थी जो अब दूसरों के लिए तमाशा बना पड़ा था। ये गुनाह से लुत्फंदोज होता रहा था। उसने जिंदगी में रंग रिलियों के किसी मौके को हाथ से ना जाने दिया था। वो नहीं सोचता था ऐसा कि वक्त आएगा जब वो अपने खानदान के लिए किलिंग का टीका बन जाएगा। वो नहीं समझता था कि वो दुनिया की नजरों में बदबख्त और हौलनाक शख्स होगा। पहले पहल उसने सोचा कि मेरी ये गलती मासूम सी गलती है, इससे मुझे कोई दुख ना पहुंचेगा। मगर जब वो तनजुली की राह पर चल निकला तो फिसलता ही चला गया, रुकने का कोई मौका हाथ ना आया। बदपरहेजी और लचरपन ने उसके तमाम नेक खसाइल को दागदार कर दिया। यूं इब्लीस ने उस पर मुकम्मल कब्जा जमा लिया। अब वो बहुत तिश्ताया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। अपनी खोई हुई जवानी को हासिल करने के लिए जब उसने रुपया पैसा और अपनी खुशियों की कुर्बानी देना चाही, तो उस वक्त तक वो पूरे तौर पर इब्लीस के शिकंजे में फंस चुका था। इब्लीस ने उसकी तमाम कवा को अपने कब्जे में ले लिया। आजमाने वाले ने उसको बड़ी बड़ी दिलकश चीजें पेश करके फंसा रखा था। वो सब जो खुद को बदी के हवाले करते हैं, उनका यही अंजाम होता है। वो तारीकी, मायूसी और दीवानगी का शिकार रहते हैं। उनकी रूह बर्बाद हो जाती है। वो बुरी रूह जिसने मसीह को बयाबान में आजमाया था और जिसने कुफ्र नहूम के शख्स को अपने कब्जे में कर रखा था, उसी ने ही कम एतकाद यहूदियों को अपने नरगे में फंसा रखा था। उस बुरी रूह ने उन्हें पारसाई के बारे मुतकब्बिर बना दिया था। कू धोखा दही के जरिए इब्लीस की मतलब बरारी हुई और उन्होंने मसीह को रद्द कर दिया। यहूदियों की हालत उस शख्स से ज्यादा मायूसकुन थी जिसमें बदरूहें थीं, क्योंकि यहूदी मसीह की मदद की जरूरत महसूस ही ना करते थे, इसलिए वो पूरी तरह इब्लीस का शिकार हो चुके थे। मसीह यीशु की सारी खिदमत तारीकी की हुकूमत के खिलाफ जंग करने में गुजरी। कदीम जमानों से ही इब्लीस और उसके बुरे फरिश्तों की ये कोशिश रही है कि इंसानों की रूह और बदन दोनों पर कब्जा जमाए। इस मकसद को हासिल करने के लिए इब्लीस कभी उन पर गुना और कभी तकालीफ लाता है। इस पर तुरा ये कि इब्लीस उन तमाम गुनाहों और दुखों का खुदा को जिम्मेदार ठहराता है। यीशु मसीह इंसानों पर खुदावन की सीरत जाहिर करता था। वो इब्लीस की ताकत को मिलियमीत करता था। जो इब्लीस की कैद में बंद थे उनको आजाद करता था, जबकि बदी का शहजादा अपनी बर्तरी का खाहां था। चुनाचे उसने अपनी तमाम बदी की कुव्वतों को बुलाकर हुक्म दिया कि हर कदम पर यीशु की खिदमत में रुकावट डाले। रास्तबाजी और गुनाह की आखिरी कश्मकश के मौके पर भी ऐसा ही होगा। नई जिंदगी नूर और कुदरत मसीह के शागिर्दों पर आसमान से नाजिल होगी, जबकि इब्लीस के हवारियों को इस जमीन से नई जिंदगी और कुव्वत मिलेगी। जमीन का हर अंसर शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। धोखादही के जरिया सदियों से इब्लीस काम करता रहा है। वो नूरानी फरिश्ता की सूरत में भी जाहिर हो जाता है। यूं अवाम गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जे होकर ईमान से बरगश्ता हो जाते हैं। तिमोथियुस 1:4। यीशु मसीह के जमाना में इसराइली असातिज़ा और लीडर इब्लीस का मुकाबला करने के लिए बेबस थे, क्योंकि कलाम मुकद्दस, जो बुरी रूहों का मुकाबला करने के लिए अजबस जरूरी था, वो उसे नजरअंदाज कर रहे थे। देखिए, ये वाहिद खुदा का कलाम था जिसके जरिए यीशु इब्लीस पर गालिब आया। इसराइली कयादत ये दावे करती थी कि हमारे पास खुदा का कलाम है, मगर वो सिर्फ अपनी रसूम और अपने बनाए हुए कवानीन पर अमल दरामद करते थे। अक्सर उनकी ताबीर व तफसीर खुदा के कलाम से मुतजाद होती थी। वो सादा तालीम को पचीदा बना देते और जो जरूरी सदाकतें थीं उनका इनकार कर देते। यूं बेएतकादी का बीज बोया जाता और खुदा के कलाम की ताकत को मिलियामीट कर दिया जाता। चुनाचे बुरी रूहों के लिए रास्ते तैयार हो जाते और वो अपने मकसद में कामयाब ठहरते। तारीख खुद को दोहराती रहती है। आज भी हमारे जमाने के मजहबी रहनुमा कलाम मुकद्दस का एतराफ और एहतराम करते हुए भी ईमान की तबाही का बाइस बनते हैं और किताब मुकद्दस के सादा सादा इख्तिबासात की अपनी मर्जी के मुताबिक ताबीर कर लेते हैं। दू के हाथ में खुदावन का पाक कलाम दोबारा तख्लीक की कुव्वत खो देता है। यूं बेहयाई की रेल पील और बदी आम हो जाती है। जब इब्लीस किताब मुकद्दस पर से इंसानों का ईमान खत्म कर देता है, तो वो उनकी तवज्जो किसी दूसरी कुव्वत के मंबा की तरफ मबजूल करा देता है। वो सब लोग जो इल्हामी नुस्खों की सादा तालीम और रूहुल कुदुस की कायल करने वाली कुव्वत से मुंह मोड़ लेते हैं, वो बदरूहों को दावत देते हैं कि उनके जिस्म और जहन दोनों को अपने कब्जा में कर लें। यूं वो नुक्ताचीनी, शक व शुभात, तसव्वुफ और बकाए रूह के नजरिया के लिए राह हमवार कर देते हैं। انجیل کی تشہیر کے پہلو بپہلو جھوٹی روحوں کے نمائندے سرگرم عمل ہیں۔ بہت بہت سے لوگ محض تجسس کی تشفی کے لیے اس کے ساتھ گٹ جوڑ کرتے ہیں، اور یہ دیکھ کر کہ یہ انسانی قوت سے زیادہ کام کرنے والی روحیں ہیں ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ایسے لوگ بدروحوں کے چنگل میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ چونکہ یہ جھوٹی روحیں اس کی اپنی طاقت سے کہیں زیادہ زوراور ہوتی ہیں، اس لیے وہ ان کی پر اسرار قوت سے رہائی نہیں پا سکتے۔ روح کی حفاظت کے لیے جو باڑ تھی وہ توڑ دی گئی ہے، گناہ کے خلاف کوئی پناہ نہیں رہی۔ جب ایک دفعہ خدا کے کلام اور روح القدس کو رد کر دیا جاتا ہے تو کسی شخص کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اب وہ گناہ کی اتھاہ میں اتر جائے گا۔ جیسے کفر نحوم کے شخص کو ابلیس نے جکڑ رکھا تھا، اسی طرح روح القدس اور خدا کے کلام کو رد کرنے والے کو اس کے مخفی گناہ اور اس کے بے قابو جذبات اسیر کر لیتے ہیں۔ اس کے باوجود اس کی حالت مایوس کن نہیں ہے۔ جس وسیلہ سے مسیح ابلیس پر غالب آیا، اسی وسیلہ سے ہم بھی بدروحوں پر غالب آ سکتے ہیں، یعنی خدا کے کلام کی قدرت سے۔ خدا ہماری اجازت کے بغیر ہمارے ذہن کا قبضہ نہیں لیتا، لیکن اگر ہم اس کی مرضی جاننے اور پوری کرنے کی خواہش رکھتے ہوں تو پھر اپس کے تمام وعدے ہمارے لیے ہیں، اور سچائی وے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ اگر کوئی اس کی مرضی پر چلتا ہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں۔ یوحنا 32:8-17-7۔ ان وعدوں کی بدولت ایمان کے ذریعہ ہم گناہ کی قید سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ ہر شخص کو اختیار حاصل ہے کہ وہ جس طاقت کے تحت رہنا چاہے اس کا انتخاب خود کرے۔ کوئی بھی اتنا بدی میں غرق نہیں ہوا کہ وہ نجات نہ پا سکے۔ جس شخص میں بدروحیں تھیں وہ بے شک وہی کلام کر سکتا تھا جو ابلیس نے اس کے منہ میں ڈالا تھا، لیکن یاد رہے کہ وہ دعا جو اس کے دل میں تھی مگر لبوں تک نہ آ سکی۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے سن لی اور اسے شفا بخشی۔ جو خدا کے آئین کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، انہیں خداوند نہ تو ان کی فطری کمزوریوں میں اور نہ ہی ابلیس کے قبضہ میں رہنے دیتا ہے، ان کو نجات دہندہ دعوت دیتا ہے۔ اگر کوئی میری توانائی کا دامن پکڑے تو مجھ سے صلح کرے، ہاں وہ مجھ سے صلح کرے۔ یسعیاہ 5:27۔ وہ روح جو ابلیس کے سایہ تلے رہی ہو، ابلیس کے حواری اسے اپنے قبضہ میں رکھنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں، مگر خداوند کے پاک فرشتگان اپنی قوت سے اسے بچائے رکھتے ہیں۔
خداوند فرماتا ہے، کیا زبردست سے شکار چھین لیا جائے گا اور کیا راست باز کے قیدی چھڑا لیے جائیں گے؟ خداوند یوں فرماتا ہے کہ زور آور کے اسیر بھی لے لیے جائیں گے اور مہیب کا شکار چھڑا لیا جائے گا، کیونکہ میں اس سے جو تیرے ساتھ جھگڑتا ہے جھگڑا کروں گا اور تیرے فرزندوں کو بچا لوں گا۔ یسعیاہ 24:49-25۔
بہت جلد یسوع مسیح کی خدمت کی خبر سارے کفرنہوم میں پھیل گئی۔ ربیوں کے خوف سے لوگ سبت کے دن شفا پانے نہ آئے، لیکن جون ہی سبت گزر گیا، لوگ جوک در جوک یسوع کے گرد جمع ہو گئے۔ گھروں، دکانوں، منڈیوں، حتیٰ کہ چاروں طرف سے لوگ اس گھر میں پہنچ گئے جہاں یسوع تھا۔ بعض بیماروں کو چارپائیوں پر ڈال کر لایا گیا، بعض چھڑی کے سہارے چل کر آئے، بعض کو ان کے دوست احباب سہارا دے کر لا رہے تھے۔ وہ گرتے پڑے یسوع کے قدموں میں آ گئے۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ کل یہ عظیم طبیب ہمیں میسر ہوگا یا نہیں، اس لیے آنے والے بیماروں کا تانتا بن گیا۔ کفرنہوم نے ایسا دن کبھی نہ دیکھا تھا۔ فضا فتح اور نجات کے نعروں سے گونج اٹھی۔ جو خوشی یسوع نے دکھیوں کو دی تھی، اسے دیکھ کر یسوع بھی بہت مسرور ہوا، جب تک تمام مریضوں کو شفا نہ بخشتی۔ یسوع نے آرام نہ فرمایا، لبڑی رات تک لوگ آتے جاتے رہے۔ رات گئے بھیڑ رخصت ہوئی، اس کے بعد شموں کے گھر سے شور شرابہ موقوف ہوا۔ مصروف دن گزارنے کے بعد یسوع نے آرام کرنا چاہا۔ دنیا ابھی گہری نیند کے مزے لوٹ رہی تھی جب یسوع جاگ اٹھا، اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی۔ مرکز 35:1۔ یسوع مسیح کی زمینی زندگی یوں گزری۔ وہ اپنے شاگردوں کو اکثر موقع دیتا کہ اپنے گھر والوں سے مل کر آئیں، مگر اس نے کسی کو اجازت نہ دی کہ اسے کام سے باز رکھ سکے۔ سارا دن وہ بیماروں کو شفا،
उन पढ़ और अनाड़ी लोगों को तालीम देने और अंधों की बीनाई बहाल करने और भूखों को खाना खिलाने में गुजार देता। शाम का वक्त या नूर का तड़का हैकल या पहाड़ों में अपने बाप की रफाकत में गुजारता। अक्सर वो दुआ में सारी सारी रात गुजार देता और सुबह होते ही लोगों की खिदमत में मसरूफ हो जाता। सुबह सवेरे पतरस और दूसरे शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि कफरनहूम के लोग तुझे ढूंढ रहे थे। वो सुलूक जो यरूशलेम के लोगों ने यसू के साथ किया था, उसकी वजह से शागिर्द सख्त बेदिल थे। यरूशलेम के हाकिम तो यसू की जान के दर पे थे, यहां तक कि उसके अपने कस्बा के लोगों ने उसे जान से मारना चाहा। मगर कफरनहूम में उनकी बड़ी आवभुगत हुई, जिसकी वजह से शागिर्दों के दिल उम्मीद से भर गए। गलीलों में ऐसे लोग पाए गए जो खुदा की बादशाही के मुतमन्नी थे, लेकिन जब मसीह ने फरमाया कि आओ हम और कहें आस पास के शहरों में चलें ताकि वहां भी मुनादी करूं क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं, तो वो ये सुनकर बड़े हैरान हुए। उस जोशो खरोश के पेश नजर जो कफरनहूम में पैदा हो गया, ये खतरा लाहक हुआ। मुबादा लोग यस्सू की खिदमत की गर्ज
गायत को पसे पुष्ट डाल दें। यसु मसीह नहीं चाहता था कि लोग उसे सिर्फ अजीम तबीब मानकर उसकी तरफ मुतवज्जे हों, बल्कि वो चाहता था कि लोग उसे अपना नजात दहिंदा तस्लीम करके उसके पास आएं। लोग तो ये तस्लीम कर चुके थे कि ये बतौर बादशाह इस दुनिया पर अपनी सल्तनत कायम करने आया है, मगर यसु मसीह ने उनकी तवज्जो दुनियावी चीजों से हटाकर रूहानी चीजों की तरफ मबजूल कराई, क्योंकि वो जानता था कि महज जिस्मानी और दुनियावी कामयाबी उसके मिशन की राह में बायस रुकावट है। वो अजमत और हशमत, हुनर और दौलत जो दुनिया देती और जिसकी ख्वाहिश रखती है, उससे यसु ना आशना था। दुनियावी चीजें देकर दुनिया वाले बेशक वफादारियां खरीदते हैं, यसु मसीह ने उनमें से किसी एक को भी इस्तेमाल ना किया, क्योंकि उसकी पैदाइश से सदियों पेशतर ये पेशनगोई की गई थी। वो न चलाएगा और न शोर करेगा और न बाजारों में उसकी आवाज सुनाई देगी। वो मसले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और टिमटिमाती बत्ती को न बुझाएगा। वो रास्ती से अदालत करेगा। वो मांदा न होगा और हिम्मत न हारेगा जब तक कि अदालत को जमीन पर कायम न कर ले। जजीरे उसकी शरीयत का इंतजार करेंगे। यसैया 2:42-4। फरीसी अपनी इम्तियाजी रसूम, खैरात और मुनफरिद किस्म की इबादत के जरिए अपनी शनाख्त के खहां रहते थे। वो हर वक्त अपने मजहबी अकायद पर बहस व तमहस करते देखे जाते थे ताकि लोग उन्हें रास्तबाज जाने। मुख्तलिफ फिरकों में तकरार की वजह से नौबत हाथापाई पर भी आ जाती थी। उनका शोर शराबा कूचों में भी सुना जा सकता था, और ये सब कुछ तमाम लोगों तक महदूद ना होता था, बल्कि तकरार में उनके बड़े बड़े शरा के मुअल्लिम और अदीब भी हिस्सा लेते थे। यसु मसीह की जिंदगी उसके बालिकुल बरक्स थी। उसने शोहरत हासिल करने के लिए उनमें से कोई भी चीज ना अपनाई, क्योंकि यसु मसीह खुदावंद में मख्फी था और खुदावंद खुदा की सीरत अपने बेटे के वसीला दुनिया पर जाहिर हुई। रास्तबाजी का सूरज अपने जलाल के जरिए दुनिया वालों को ना तो जलाना चाहता था, ना ही उनकी आंखों को खैरा करने का ख्वाह था, क्योंकि लिख है, उसका जहूर सुबह की मानिंद यकीनी है। हूसिया 3:6। बड़ी शायस्तगी और पुरसुकून कैफियत में तड़का होता है जो जमीन की तमाम जुल्मत को दूर करके दुनिया को बेदार कर देता है। इसी तरह रास्तबाजी का सूरज जलवगर होता है। तुम पर जो मेरे नाम की ताजीम करते हो, आफताब सदाकत ताले होगा। मलाकी 2:4।